वहाँ बावड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो है बगीचे हैं, वो जाकर के वहाँ ऐसी रहने लगी जैसे सिंगनियों के बीच में हिरणी रहती है। सीता वहाँ चली गई, वहाँ वो शोक में डूबी हुई है, एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, अपने पति और अपने देवर का स्मरण कर रही है। आकाश के अंदर ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने, सबने मिलकर आपस में सोचा क्या करना चाहिए। पितामह ब्रह्मा ने इंद्र को बुला करके कहा कि हे इंद्र, संपूर्ण त्रिलोकी के हित के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए इतना काम तो हो चुका है कि रावण ने सीता का हरण किया है, लंका में ले जाकर उसे रख दिया है। सीता बड़ी पतिव्रता है, वो अपने तेज से अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है, परंतु वो अपने पति को न देखकर बहुत शोक कर रही है। वो चारों तरफ राक्षसों से घिरी हुई है, लंका समुद्र के अंदर है। ऐसे समय में सीता से बात करना भी बड़ा मुश्किल है, परंतु माया के द्वारा ही कुछ बात संभव है। इसलिए हे इंद्र, तुम यदि वहाँ सीता के पास माया के द्वारा जाओ, वहाँ पहले तुम सब लोगों के आंखों के अंदर नींद नींद भर दो। नींद भरने के बाद जब सब लोग सो जाएं, तब तुम जाकर सीता के पास जाकर ये उत्तम खीर है, खीर उसको प्रदान करो, क्योंकि सीता लंका में भोजन कर नहीं सकेगी। इसको अंगराग तो पहले दे ही दिया है अनुसुया ने, उत्तम वस्त्र दे ही दिए हैं, उत्तम आभूषण भी दे दिए हैं, लेकिन उत्तम खाद्य बाकी रह गया, वो तुम ले जा करके दो। अब वो सीता वह न नहाएगी न धोएगी, तो भी उसकी कांति बनी रहेगी, और उसके साथ साथ में निद्रा तुम ले जाओ, और ये भविष्य तुम ले जाओ, इससे उसके कोई भूख प्यास भी नहीं लगेगी। इंद्र को ये बात बड़ी अच्छी लगी। पहले इंद्र आकाश में निद्रा को लेकर के गया, फिर उसने निद्रा को कहा कि हे निद्रे, तुम जाकर लंका में सब जगह छा जाओ। तो सब जगह वो निद्रा छा गई, सबको नींद आ गई। विशेषतः अशोक वाटिका में रहने वाली जितनी राक्षसियां थी, सब वहां पर नींद के अंदर, गहरी नींद के अंदर सो गई, किसी को कुछ नहीं पता चला। तब वो इंद्र वहां आया, बड़े हर्ष के साथ आया। इंद्र ने आकर हाथ जोड़ते हुए सीता जी से कहा, हे सीता जी, मैं देवराज इंद्र हूँ, मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है, आपका एक विशेष कार्य करने के लिए भेजा है। हे सीता जी, आपको मालूम होगा अगस्त ऋषि के आश्रम में राम के लिए मैंने अगस्त्य को अस्त्र दिए थे, वही अस्त्र देने वाला मैं इंद्र आपके पास आया हूँ, ये आपको भविष्य प्रदान करता हूँ, आप इसे स्वीकार कर लीजिए। ये समुद्र देवताओं के द्वारा पार करने योग्य नहीं है, इसमें देवता लोग कोई लंका में आ नहीं सकते हैं, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ यहाँ आया हूँ। मत प्रसादात समुद्रम से हम सब देवता लोग राम की अव्यक्त रूप से सहायता कर रहे हैं। आखिर रावण से डरना भी पड़ता है और राम की सहायता भी करनी पड़ती है, ताकि रावण राम की तरफ ही विचार करे, राम के साथ ही लड़ाई करे, हमारे साथ बैर विरोध न करे। राम के साथ बैर विरोध करने पर रावण का पराभव निश्चित है। यदि सीधा ही वो हमसे लड़ाई करेगा, तो उस समय में हमारे साथ में यदि वो युद्ध करे, तो हम उसके साथ में युद्ध कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम गुप्त रूप से राम की सहायता कर रहे हैं। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, सबको नींद आ रही है, और आप ये भविष्य का भक्षण कर लीजिए। सीता देवेंद्र, कथम जाना भी, मैं कैसे जानूं कि आप स्वर्ग से आए हुए हो। देवताओं के चिन्ह मैंने राम और लक्ष्मण से कई बार सुने हैं, और वो देवताओं के चिन्ह मैं जानती हूँ। जब तक मुझे विश्वास न हो जाए, तब तक मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? आप मुझे अपने चिन्ह दिखाइए। सीता के वचनों को सुनकर के इंद्र ने ऐसे चिन्ह दिखाए। इंद्र पृथ्वी के ऊपर खड़ा रहा, पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया। इंद्र अपनी आंखों को टमटमाया नहीं, आंखें खुली की खुली रही। इंद्र के वस्त्र थे, वो वस्त्र एकदम स्वच्छ थे, इंद्र की माला के फूल कुमलाए हुए नहीं थे। इन सब बातों को सीता जी ने बड़े गौर से देखा और गौर से देख करके रोती हुई सीता ने कहा कि हे इंद्र, पहचान गई हूं, देखो इंद्र मेरे पर क्या बीती है। मेरे ससुर महाराज दशरथ वो देखो बड़े अच्छे हैं कि जिन्होंने अपना जीवन राम के अंदर लगा करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, और मैं देखो कहां यहां लंका में राक्षसों के द्वारा हरी गई हूं। तुम्हारे द्वारा दी हुई ये खीर मैं स्वीकार करती हूं, यदि इससे हमारे रघुवंशियों की कीर्ति बढ़ती है तो मैं इसको जरूर स्वीकार करूंगी। इस प्रकार से स्वीकार करके राम जी महाराज ने, सीता जी ने सबसे पहले राम जी को याद किया, फिर लक्ष्मण को याद किया, दोनों को याद करते हुए सीता ने कहा, यदि मेरे प्राणनाथ इस संसार में अभी जीवित हो और यदि मेरे देवर जीवित हो तो ये वस्तु मैं उनके अर्पित करती हूँ। अर्पित करने के बाद फिर हाथ जोड़ करके मन में राम जी का ध्यान करके और फिर उसको स्वीकार कर लिया। इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसके बाद इंद्र सीता जी का अभिवादन करके वहां से निद्रा सहित अपने लोक में चला गया। इस बात का ज्ञान अयोध्या लंका में किसी को भी नहीं हुआ, कोई इस बात को जानता नहीं था। इधर सीता के हरण होने के पश्चात राम जी महाराज मारीच की जब ये ही सीते ही लक्ष्मण इस प्रकार की अपनी आवाज की बात सुनी तो राम जी तुरंत घबराए हुए से अपनी कुटिया की ओर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे और मन में सोच रहे थे, ओहो बड़े अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे, संभवतः कल्याण हो, कभी राक्षसों ने उसका हरण तो नहीं कर लिया है, कोई राक्षस उसको खा तो नहीं गया है, क्योंकि मारीच की बात से सीता जरूर दुखी हुई होगी और सीता ने लक्ष्मण को जरूर मेरे रक्षा के लिए भेजा होगा। ऐसे समय में राक्षसों ने जब इतनी माया रची है तो सोच समझ के ही तो रची होगी, सीता का उन्होंने वध कर दिया होगा। एक सोने का मृग बन करके देखो मेरे साथ तो ठगाई की तो की, लेकिन सीता के साथ और की है। ओहो इस राक्षस को मालूम था कि मैं तो राम के बाण से मरूंगा, लेकिन पीछे की इसकी राजनीति, इसका षड्यंत्र कुछ और है, मैं जानता नहीं था। ओहो जनस्थान में 14,000 राक्षसों के साथ बैर लेकर मुझे थोड़ा और सावधान होना चाहिए था, ये बड़े अपशकुन हो रहे हैं, इन अपशकुनों से क्या होगा कुछ पता नहीं है, मेरे मन में बड़ा भय हो रहा है। इस प्रकार से राम जी महाराज बड़े जल्दी जल्दी अपने कुटिया की ओर आ रहे हैं। जिन पशुओं को बाएं चलना चाहिए था वो दाएं चलते हैं, जिनको दाएं चलना चाहिए वो बाएं चलते हैं, आकाश के अंदर भी ऐसा ही अपशकुन देख रहे हैं। इतने में ही लक्ष्मण को अपने सामने आता हुआ देखते हैं। लक्ष्मण को देखते ही एकदम राम जी महाराज विषण हो गए। उस समय में लक्ष्मण जी के चेहरे पर देखते हैं, लक्ष्मण का चेहरा कैसा है, लक्ष्मण का चेहरा खिला हुआ नहीं है, लक्ष्मण का चेहरा मुरझाया हुआ है। राम जी महाराज सोच रहे हैं कि हो न हो सीता के लिए कोई अप्रिय समाचार लक्ष्मण सुनाने वाला है। लक्ष्मण के हाथ में धनुष है, बाण है, लक्ष्मण के मन में बड़ा क्रोध है, लक्ष्मण के चेहरे पर कोई प्रसन्नता का चिन्ह नहीं है। राम जी महाराज जल्दी जल्दी गए और बड़े कठोर शब्दों में, पहले तो कठोर शब्दों में कहा, फिर आगे जाकर के थोड़े नरम शब्दों में भी कहा, ए लक्ष्मण तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप करके यहाँ आए हो, मेरे मन में ऐसा लगता है सीता अपने आश्रम में नहीं है, मुझे हे वीर संशय में क्यों डाल रहे हो, कैसे कैसे मेरे लिए अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि सीता समग्र रूप से हमको आश्रम में नहीं मिलेगी, ये देखो ये मृग किस प्रकार से भाग रहे हैं, ये किस प्रकार से आवाज कर रहे हैं, ये पक्षी किस प्रकार से चीख रहे हैं, इन सब की बातों से लगता है कि सीता पर कोई विपत्ति आई है, सीता को राक्षसों ने मार दिया है, लक्ष्मण तुमको मालूम था हमारा अनेक राक्षसों से बैर हो गया है, इस कारण से सीता पर कभी भी विपत्ति आ सकती है, तुम सीता को आश्रम में अकेली छोड़कर कैसे आए। इस प्रकार से लक्ष्मण जी को खूब जो है उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी इस समय में बेचारे क्या करें, लक्ष्मण जी ने सिर नीचा कर लिया। राम जी महाराज फिर धमकाते हुए बोलते हैं, दंडकारण्य में तुम आए थे लक्ष्मण, उस समय में वेदे ही याम हित्वा त्वम आगत है, वेदे ही हमारे साथ थी, उस सीता को तुमने कभी नहीं छोड़ा, आज तुम सीता को छोड़कर क्यों आए। मैं राज्य से च्युत हुआ, दंडकारण्य में आया, सीता ने सदा मेरा साथ दिया, लक्ष्मण यदि सीता मुझे वहां नहीं मिलेगी लक्ष्मण मैं मर जाऊंगा, मुझे सीता के बिना यहाँ संसार में नहीं जीना है, सीता मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, सीता ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है, सीता को मैंने कितना मना किया था, इतने पर भी सीता ने मेरी बात को न स्वीकार करके जीवन को कष्ट में डाल करके भी वो मेरे साथ आई है। इस प्रकार से सीता ने अपने में मौत को बुलाया, उस सीता के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। कैकेयी का आज मनोरथ सफल हो गया, उसको तो अपना बेटे के लिए निष्कंटक राज्य चाहिए था, वो राज्य उसको मिल गया, और अब कौशल्या कैकेयी की दासी बन करके रहेगी, क्योंकि मैं तो अयोध्या जाऊंगा नहीं, मैं तो सीता के वियोग में यही अपने प्राण त्याग देता हूँ। और देखो क्या बात है, तुम बोलते नहीं हो, ब्रूही लक्ष्मण बताओ तो सही सीता के क्या हालचाल है, सीता को मार दिया, सीता को कोई खा गया, क्या बात हुई, तुम्हारे सामने कोई राक्षस सीता को उठा के खा जाए तुम देखते रहो, ये कैसे संभव है, तुम कुछ तो बताओ। लक्ष्मण तुम बोलते नहीं हो, देखो मेरे हृदय की धड़कन बढ़ती चली जा रही है, सर्वथा राक्षसा तेन जिम्मेन विदुरात्मना सुदुरात्मना दुरात्मा, राक्षस ने किस प्रकार से जोर से आवाज लगाई, लक्ष्मण सीते मेरी जैसी आवाज लगाई, उससे शायद तुम डर गए होंगे, सीता ने भी शायद डर करके तुमको भेजा होगा। ओहो ये राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं, मायावी तो इसने स्वरूप बनाया, मायावी आवाज निकाली, और इस मायावी आवाज के निकालने का अंतिम अर्थ कुछ और ही रहा होगा, मैं बहुत संकट में पड़ गया हूँ। लक्ष्मण तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, मेरी व्यथा बढ़ती चली जा रही है, मैं सीता के लिए बहुत दुखी हूँ, लक्ष्मण मैं बहुत दुखी हूँ। इस प्रकार से राम जी महाराज लक्ष्मण का हाथ पकड़े पकड़े और थोड़े दूर पर आए, और आश्रम के पास में अभी पूरे आए नहीं है, आश्रम के बाहर आकर, अभी आश्रम के बाहर ही है, बाहर माने बहुत दूर ही है, लक्ष्मण से फिर कहने लगे, लक्ष्मण तू यहाँ सीता को छोड़ के क्यों आया, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, तुमने आज हमारे विश्वास की रक्षा नहीं की, मुझे बड़ी शंका हो रही है, मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि सीता का शायद अब मेरा मिलना संभव नहीं है, देखो मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, बाई आंख फड़क रही है, बाई भुजा फड़क रही है, बाएं अंग फड़क रहे हैं, और मेरा हृदय भी स्पंदित हो रहा है। दृष्ट्वा लक्ष्मण दू, मैंने तुम्हें दूर से देख लिया था, तभी मेरे मन में अनेक प्रकार के भाव पैदा हो गए थे। ये सब बातें सुनकर के लक्ष्मण जी ने राम के सामने बड़े दुखी होकर के हाथ जोड़ करके और नेत्रों में जल लेकर बड़े विनम्रता से और बड़ी करुणा से कहने लगे, महाराज न स्वयं काम कारेण, मैं अपनी मर्जी से देवी सीता का त्याग कर मैं नहीं आया हूं, मुझे बार बार देवी ने प्रेरणा दी है, बार बार मुझे उकसाया है, तभी मैं आपके पास आया हूं। हे महाराज जब आपका स्वर हे लक्ष्मण हे सीते इस प्रकार का आया कि मेरी रक्षा करो, इसको सुनते आप जैसा जान रहे हैं कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि सीता एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई, आर्त स्वर को सुनकर के सीता स्नेह के अंदर पागल सी हो गई, तत्काल वो रोती बिलकती चिल्लाती भय के अंदर फंसी हुई मुझे बहुत कुछ कहकर के कहने लगी, जाओ तुम क्या करते हो लक्ष्मण, जल्दी जाओ, तुम्हारे भाई पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, निवृत्ता भव नास्ती तत केना पेतद उदाहरितम। मैंने कहा सीता जी आप किसी प्रकार से चिंता मत करो, ये तो एक बनावटी आवाज है। जो बनावटी मृग बन सकता है वो बनावटी आवाज भी निकाल सकता है, राम किसी से कम नहीं है। विगर रितन च नीचन च कथम आर्यो विधास्यते, ऐसा नीच शब्द राम कैसे कह सकते हैं कि मैं विपत्ति में फंसा हुआ हूँ, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने कहा कि जो सबको बचाने वाले हैं वो किसकी सहायता लेना चाहेंगे? और सारे देवता जिनसे डरते हैं, सारा संसार जिनसे डरता है, उनके लिए आप विचार मत करो। ये मेरे भाई का स्वर नहीं है, मेरे भाई का स्वर मैं पहचानता हूँ। मेरे भाई के स्वर के क्या, श्वास में भी कोई विपत्ति आए तो मेरे अंदर विपत्ति आए, लेकिन मेरे मन में कोई हलचल नहीं है। इसलिए सीता जी आप कोई किसी प्रकार का विलाप मत करो। मैंने उनको खूब अच्छी ढंग से समझाया। मैंने कहा कि राम अजय है, युद्ध के अंदर कोई उनको परास्त नहीं कर सकता है। विश्वामित्र जी महाराज ने ऐसे ऐसे बाण दिए कि मायावी राक्षसों की माया एक बाण से समाप्त हो सकती है, आप मुझ पर विश्वास करो। खूब अच्छी तरह से मैंने उसको समझाया तो सीता ने वापिस जो मुझे उत्तर दिया, मैं क्या कह नहीं सकता हूं, मुझे बहुत बुरा लगा। वो शब्द मेरे अंदर बहुत चुभ गए। सीता ने मुझे कहा, लक्ष्मण मैं तुम्हारे हृदय के अंदर छिपे हुए गंदे पाप को समझ रही हूँ। तू राम के मरने के बाद मुझे प्राप्त करना चाहता है, तू भरत के साथ मिलकर के यहाँ षड्यंत्र करके आया है। तुम्हारी योजना है कि राम को किसी प्रकार विपत्ति में पटक कर करके उसके मर जाने के बाद हम लोग बड़ा सुख लेंगे। तुम प्रच्छन्नचारी रिपु हो, माने छिपे हुए एक शत्रु हो, और मेरे प्रेम के अंदर तुम आए हो। तुम्हारा राम से प्रेम नहीं है, तुम्हारा मेरे से प्रेम है, और राम के मर जाने के बाद मैं स्वयं मर जाऊंगी, फिर तुम्हारा ये मेरे प्रेम क्या काम आएगा। इस प्रकार से मुझे क्रोध से बार बार ये जो शब्द कहे, इन शब्दों से मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने मन में सोचा कि मैं तो राम की सेवा के लिए आया था, सीता की सेवा के लिए आया था, लेकिन सीता ने इस प्रकार से मेरे ऊपर क्या भाव बनाए, मुझे बहुत दुख हुआ। उस दुख के कारण मैं आया हूँ। राम ने कहा, लक्ष्मण तुमको ऐसा दुख नहीं करना चाहिए था, तुमने आज मेरे साथ विश्वासघात किया है। लक्ष्मण तुमने पाप किया है, तुम जानते थे कि मैं राक्षसों के बीच में कभी मरने वाला नहीं हूँ, तो फिर तुमने ये पाप क्यों किया? ऐसा पाप तुमको नहीं करना चाहिए था, तुमने पाप किया है। सीता तो एक स्त्री है, स्त्री होने के नाते वो कुछ भी कह सकती है, लेकिन तुम तो इन बातों को समझने वाले हो। यदि स्त्री ने कुछ कहा भी तो मैं जब तक वहां नहीं आता तब तक तुमको नहीं आना चाहिए था। सर्वथा तपनी तुम थे, तुमने मेरा बड़ा नुकसान कर दिया। लक्ष्मण बहुत बड़ा नुकसान किया है, तुमने अपने क्रोध को वश में नहीं किया, उसी का ये फल है कि आज सीता आश्रम से शायद हमको नहीं मिले, आश्रम से ले गई होगी, कोई ले गया होगा, कोई मार दिया होगा, खा गया होगा। सीता अब अपने को मिले ऐसा लग नहीं रहा है, तुम यहाँ सीता को छोड़ के आए क्यों? इस प्रकार से राम जी महाराज के सामने लक्ष्मण जी रोने लगे और राम जी महाराज की वाणी भी खलित होने लगी। अनेक प्रकार के अशुभ लक्षण उनके सामने प्रकट हुए। राम जी महाराज और लक्ष्मण जी दोनों के दोनों आश्रम के अंदर गए। अंदर जाते ही राम जी ने जोर से आवाज लगाई, सीते, परंतु वहां आश्रम में सीता हो तो दिखाई दे, सीता तो थी नहीं। शून्यम अवसथम दृष्ट्वा, वो आश्रम बिल्कुल सूना था। राम जी महाराज आश्रम के एक एक जगह पर गए, कहीं पर भी सीता दिखाई नहीं दी। पर्णशाला में गए, वहां देखी, वहां दिखाई नहीं दी। राम जी महाराज वृक्षों के पीछे गए, वृक्ष ऐसे मुरझाए हुए, उनके पत्ते जो खिले मिले रहते थे वे एकदम मुरझाए हुए से, मानो वृक्ष रो करके बताते हुए उनके पत्ते झड़ रहे थे, लताओं के पत्ते झड़ रहे थे, वृक्षों के पुष्प नीचे पड़ रहे थे। राम ने कहा, लक्ष्मण सीता या तो किसी के द्वारा हरी गई है, या कोई मार दिया है, खा गया है, सीता अपने को नहीं मिलेगी, या वो कहीं वृक्षों के अंदर लीन भी हो सकती है। पुष्प का चयन करने का उसका बड़ा शौक है। संभवतः वो फूलों को इकट्ठा करने के लिए कहीं वो चली गई हो दूर तक, या वो नदी में भी जा सकती है। चलो चलो, सीता के लिए अपने को एक एक वृक्ष को देखना है, नदी को देखना है, पर्वतों को देखना है। इस प्रकार से राम जी विलाप करते हैं। एक कदम तुझे तो वो बहुत चाहती थी, तू आज क्यों नहीं कहता कि सीता कहाँ है। ए बिल्व, तेरे फल वाले तो उसके अंग थे, तू क्यों नहीं बताती है, तू क्यों नहीं बताता है कि सीता किधर है। हे अर्जुन, तुम तो अर्जुन हो, अर्जुन माने सरल वृक्ष होता, उसका नाम अर्जुन। तुम बड़े सरल हो और सरलता उसको बहुत प्यारी थी। अर्जुन तुम बताओ, जनक नंदिनी कहाँ गई। काकू तुम भी नहीं बोलोगे। अरे तुम कैसे बोलोगे भौरे, तुम बताओ। तुमको तो सीता के फूलों के ऊपर बड़ा गुंजन होता था, तुम तो गूंजते रहते थे, तुम तो बताओ। तिलक, तुम्हारे साथ तो सीता का बड़ा प्रेम था, बताओ कहाँ है। अरे अशोक, तेरा नाम तो अशोक है, तू अपने नाम को क्यों नहीं सार्थक करता है कि सीता वहाँ है। ताल, तुम भी हमसे नाराज हो गए। ए जामुन, तुम तो भाई जम्बू वृक्ष हो और जम्बू नद समय प्रभा और सोने के समान सीता का रंग है, निसंकोच होकर तुम मुझे क्यों नहीं कह देते। कनेर, तुम्हारे फूलों को तो वो कान में रखती थी, तुम कान में ही हमको बता दो कि सीता कहाँ है। हे आम, तुम बताओ। दाड़िम, तुम बताओ। इस प्रकार से राम पागलों के समान एक एक वृक्षों से पूछते हैं, लताओं से पूछते हैं। अयो हिरणो, ये वृक्ष क्या बताएंगे, तुम बताओ, तुम्हारे समान उसकी आंखें थी। जब कभी भी सीता की आंखों की उपमा दी जाती थी तो तुम्हारे आंखों के साथ दी जाती, तुम बताओ कहाँ है राम, कहाँ है सीता, कहाँ है बताओ, राम तुमसे पूछता है। शार्दूल, तुम बताओ मैथिली कहाँ गई। ओहो, क्या बात है, इन वृक्षों के अंदर कहीं तुम छिप गई हो। हाँ हाँ हाँ, लक्ष्मण वो दौड़ रही है, वो देखो वो देखो उस वृक्ष के पीछे छिप गई है, वो देखो थोड़ा सा मुंह दिखाती है। सीता, तुम जल्दी सामने आओ और तुम जहाँ भी हो वहाँ ठहरो, हम आ रहे हैं। देखो तुम थोड़ी दया करो, अब हंसी मजाक करने का समय नहीं रहा। देखो तुम्हारा वो पीला पीला वस्त्र मुझे साफ दिखाई देता है। देखो तुम अब दौड़ो मत, तुम दौड़ोगे तो हम भी दौड़ करके तुमको प्राप्त कर लेंगे, परंतु हमारे मन में अभी तुम्हारी बड़ी चिंता है, इस कारण से हम तुमको यही बात बोलते हैं कि तुम परिहास को छोड़ करके वहीं रहो और सीते अब हम आ रहे हैं, आप हमको वहीं पर दर्शन दो। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा पागलपन है, ये तो मेरे सीता का कोई चिंतन आंखों के सामने आ गया। कहाँ है सीता, अब मैं देख रही हूँ कहाँ है सीता, तो नहीं है। लक्ष्मण, सीता का खिला हुआ मुख मैं नहीं देख रहा हूँ, इस कारण से आज मेरे नेत्रों का कोई मुझे फल नहीं मिल रहा है। हे लक्ष्मण, बताओ सीता कहाँ है। हे लक्ष्मण, सीता के बिना मेरा कोई जीवन नहीं है। इस प्रकार से सीता जी के लिए बहुत विलाप कर रहे हैं और सीता जी को बराबर ढूंढ रहे हैं, नदियों में, तालाबों में, पर्वतों में, सब जगह वो घूमते हैं, जोर जोर से सीता की आवाज लगाते हैं। और जब सीता नहीं मिलती है तो राम जी बहुत विरही की तरह से विलाप करने लगते हैं। फिर वे दोबारा आश्रम में आते हैं, आश्रम में आकर आश्रम को सुना देख करके कहते हैं, लक्ष्मण मैं तो हार गया, वो सीता कहाँ है, किस देश में गई है, कौन ले गया है, कोई जरा सा मुझे पता चला दे तो ठीक रहे। वृक्षों के पीछे यदि छिपी हुई हो और हंसी विनोद करती हो तो भी अब हंसी विनोद का समय समाप्त हो गया। यहाँ तो एक एक श्वास के लिए हमको तड़पना पड़ता है, सीता ऐसे समय में विनोद नहीं कर सकती, सीता ने कभी विनोद नहीं किया। राम, लक्ष्मण लाओ, तुम्हारे पास शस्त्र है, मुझे शस्त्र दो, मैं अपना प्राण त्याग करना चाहता हूँ, सीता के बिना नहीं जीऊंगा। पर लक्ष्मण, एक बात का डर लगता है, यदि मैं अभी मर गया और मरने के बाद यदि स्वर्ग में मुझे महाराज दशरथ मिले और वो कहेंगे, बेटा हमने तो आपको 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य में भेजा था ना, तुम तो पहले ही दंडकारण्य को छोड़ करके स्वर्ग में आ गए, तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किए। तुमने तो ये भी तो कहा था कि 14 वर्ष के बाद मैं अयोध्या में आऊंगा, वो वचन भी तुम्हारे झूठे गए। यदि तुमको अपने वचन झूठे ही करने थे तो तुम उस समय अयोध्या से निकले ही क्यों? अयोध्या से तो तुम मेरे को सत्य करने, मुझे सत्य करने के लिए, केकई को सत्य करने के लिए और अपने आप को सत्य करने के निकले निकले थे। धिक्कार है राम, तू कहीं पर भी सच्चा नहीं निकला और तू दंडकारण्य में न रहकर वापिस यहाँ आ गया। राम तू कायर है, तू कायर है। इस प्रकार से मुझे पिताजी फटकारेंगे। लक्ष्मण कहाँ करूँ, क्या करूँ, न तो मैं मर सकता हूँ न मैं जी सकता हूँ। लक्ष्मण तुम मेरी कोई सहायता करो। तुमने सदा मेरी सहायता की थी, जब कभी मुझ पर विपत्ति आई तुमने उस समय मेरा साथ दिया। लक्ष्मण कहाँ है, सीता लाकर दे। लक्ष्मण ने कहा, हे महाराज, इस प्रकार से विषाद मत कीजिए, ये विषाद का समय नहीं है, ये तो सीता के अन्वेषण का समय है। सीता को जंगल बहुत प्रिय लगता था। सीता ने आपको पहले भी तो कहा था कि मुझे जंगल बहुत प्रिय है, वन बड़े प्रिय है, और मुझे ज्योतिषी ने कहा भी है कि तुम जंगलों में रहोगी। मुझे लगता है कि आज वो जंगलों में घूमते घूमते कोई बहुत दूर चली गई होगी। जिस प्रकार से वो हम लोग की आवाज नहीं सुन पाते हैं, कईयों की आवाज नहीं सुन पाते हैं, ऐसी सीता की आवाज अपने नहीं सुन पाए होंगे। अपने को जितनी शक्ति है सीता की खोज करनी चाहिए। हे राम, आप अपने मन में शोक मत कीजिए, शोक करने से आपकी शोभा में अंतर आ जाएगा। लक्ष्मण जी ने बड़ी शांति के साथ राम जी को कहा। फिर वे जो है नदियों में, तालाबों में, पर्वतों में फिर जो है वो खोज किए, पर कहीं सीता नहीं मिली। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जब सीता नहीं मिलती है मैं क्या करूं, मैं शोक नहीं तो प्रसन्न किस बात को लेकर हूं? लक्ष्मण ने कहा, ये दंडकारण्य बड़ा विशाल है, इस विशाल दंडकारण्य में अपने को उसी प्रकार से चलना होगा कि जिस प्रकार से आप एक एक चप्पा चप्पा उसका न देख लेते हो। यथा विष्णुर महाबाहुर बलिम बद्ध्वा महिमिमाम प्राप्स से त्वम महाप्राज्ञ मैथिलीम जनकात्मजा। हे महाराज, जैसे आपको अब शकुन होते हैं ऐसे मैं भी कुछ शकुन लेकर के आपको कह रहा हूँ कि जिस प्रकार विष्णु ने महाराज बलि को बांध करके सारी पृथ्वी को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से आप भी सीता को जरूर प्राप्त करोगे, ऐसे लक्षण मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण आओ मेरे से गले से लगो, तुम्हारी बात मुझे बहुत प्रिय लगती है, परंतु देखो वन ढूंढ लिया, पर्वत ढूंढ लिया, नदी ढूंढ ली, मुझे कहीं सीता नहीं दिखती है। आओ यदि तुम ढूंढने के लिए कहते हो तो आओ और ढूंढते हैं। हे प्रिय, हे सीते, सीते मेरे तुम प्राण के आधार हो, कहाँ हो, मेरे वचनों का अनादर मत करो। इस प्रकार से राम जी महाराज विलाप करते हैं। विलाप करने वाले राम जी महाराज को देखो, यहाँ बहुत विलाप होगा, घबराना नहीं। ये विलाप क्या है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे लिए विलाप करता है उसके लिए मैं विलाप करता हूँ। तो सीता जी ने जितना विलाप नहीं किया उससे चौगुना विलाप राम जी ने किया। राम जी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो मेरे वियोग में रोता है मैं उसको कितना चाहता हूँ, उसके वियोग में कितना रोता हूँ। तो देखो ये भगवान संसार में अपनी विरह की भक्ति बताने के लिए है। तो भाई अपने को भगवान के लिए जितनी तड़पन होगी, भगवान के मन में हमारे से मिलने की ज्यादा तड़पन होगी। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पौदार ने कहा कि भगवान तो थानसु मिलन वास्ते मरे है, थे कोनी राम जी ने चाहो, मैं तो थाने वास्ते मरे है, ये बात उन्होंने बताई। और भगवान राम यही बात दुनिया को बता रहे हैं, उनको कोई सीता से लेना देना है नहीं। आप वो प्रसंग आए तब भी देख लेना कि जब राम जी के पास में सीता आएगी तो सीता को सीधे राम जी यही कहेंगे, तो चली जाए यहां से, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। ये भी प्रसंग आएगा, पहला मिलन होगा जब रावण से, जब रावण के वहां लंका में रावण आदि सब मर जाएंगे और जब आएगी सीता राम के दर्शन करने, पहला ही वाक्य उनका है निकल जाए यहां से, तो मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं, किसी के साथ जा बोले। यहां तक कहने के लिए वो कहां क्या राम जी बोले हैं, वो वाल्मीकि रामायण में बोल देंगे, तो जावे तो किसी के पास चली जा, सुग्रीव के पास जा, भरत के पास जा, लक्ष्मण के पास जा और हनुमान के पास जा, किन्हीं के पास जा, ऐसे बोल देते हैं कड़वा वचन। वे राम जी आज सीता के लिए कैसा विलाप करते हैं, तो ये स्त्री का विलाप नहीं, ये भक्ति का विलाप है, ये भक्ति के लिए विलाप करते हैं। देखो एक भक्त भगवान के लिए तड़पता है तो भगवान के मन में उसकी तड़पन का कितना आदर है, और हम लोग धन के लिए तड़पते हैं, हम लोग संसार के भोगों के लिए तड़पते हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई नहीं तड़पता, सब हमारे से अलग है। तो हमारा संबंध वास्तव में भगवान के साथ है, क्योंकि भगवान हमारे सुख में सुखी होते हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं। देखो भगवान का सुखी दुखी होना भी बड़ा विलक्षण है, वो हम जैसे सुखी दुखी होते ऐसे नहीं होते, लीला तो ऐसी होती है पर भगवान ऐसे सुखी दुखी नहीं होते, उनका सुखी दुखी होना भी बड़ा विलक्षण है। अस्तु, राम जी ने लक्ष्मण के सामने रोते हुए कहा, लक्ष्मण इस अशोक वृक्ष की टहनी को पकड़ करके सीता जो है वो खड़ी रहती थी।